है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तक और उसमें से इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस पत्री के प्रस्तावना को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय एक से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम इब्रानियों की पत्री उसके एक अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने जीवित और सच्चे वचन के द्वारा हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें। हम सबको आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा हम निश्चय ही आपके महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, उनके बीमारों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए। आज के अध्ययन के द्वारा आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इब्रानियों की पत्री उसके एक अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मसीह भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है। इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। मित्रों, इस पद के द्वारा से आप देखेंगे कि यह पुस्तक और यह पद परमेश्वर शब्द से आरंभ होती है। यह पुस्तक कुछ पूर्व कथनों पर आधारित है, जैसे दो और दो चार होते हैं और आप उसी आधार पर गणना करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक की तरह इब्रानियों की पत्री भी परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि इन पुस्तकों में स्वीकार किया गया है कि परमेश्वर है। आज बाइबल स्कूलों में परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, जो समय की बर्बादी है। यदि आप पहाड़ों को, समुद्र को और आकाश को देखकर परमेश्वर के अस्तित्व को ना समझे तो आपके साथ कोई समस्या अवश्य है। भजन संहिता 19 उसके एक पद में लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मूर्ख ने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14 उसके एक में और अब हम देखते हैं इब्रानियों एक अध्याय के एक पद में हम एक और बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने बातें की। हम यह मानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसने मनुष्य को बुद्धि दी है, तो हमें उसका प्रकाशन प्राप्त होना है। यदि नहीं तो हमें उसकी प्रतीक्षा करना है। यह तर्क की बात ही है कि सृजनहार हम तक संदेश पहुंचाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे साथ संपर्क बना चुका है और उसका प्रकाशन परमेश्वर का प्रेरित वचन है। इब्रानियों का पहला पद स्पष्ट करता है कि हमारा धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरित वचन है। वह जिस प्रकाशन की चर्चा कर रहा है वह पुराने नियम का प्रकाशन है जो आज भी हमारे पास है। मेरे प्रियो, आलोचकों का कहना है कि इस पुस्तक का लेखक पौलुस नहीं कोई और है, क्योंकि इसकी मूल भाषा यूनानी बहुत ऊंची कोटि की है। अंग्रेजी भाषा में इसकी सुंदरता घट जाती है। इस पुस्तक के आरंभ में दो शब्दों का खेल है, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से। ये उत्तम वाक्यांश हैं। थोड़ा थोड़ा करके यह हमारी समझ के अनुसार समय नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की और फिर उससे पहले उसने अब्राहम से बात की थी स्वप्न में और स्वर्गदूत भेजकर, परंतु उसने उससे वह नहीं कहा था जो उसने बाद में मूसा से कहा। परमेश्वर ने अब्राहम को व्यवस्था नहीं दी थी, उसने उसे 10 आज्ञाएं नहीं दी थी जो आगे चलकर उसने मूसा को दी। उसने दाऊद से कहा था कि उसके वंश से मसीह आएगा। दाऊद की वृद्धा अवस्था में परमेश्वर ने कहा था कि उसके वंश से एक राजा उत्पन्न होगा और वह मसीह होगा। परमेश्वर ने अब्राहम और मूसा पर यह भेद प्रकट नहीं किया था। सच तो यह है कि परमेश्वर ने मूसा को यह कहा था कि इसराइल के पास सांसारिक राजा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनका राजा है। परंतु परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है। एक समय ऐसा आया कि इसराइल पड़ोसी राज्यों के समान राजा की मांग करने लगा। उस समय परमेश्वर ने जो उदारता दिखाई वह वास्तव में अति महान है। उसने उन्हें राजा तो दिया परंतु उनकी आत्मा दुर्बल कर दी। परमेश्वर ने संसार में उद्धारक एक मसीह लाने के लिए उनकी मांग पूरी कर दी थी। पहला पद कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह सब बातें नहीं बताई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर विभिन्न मनुष्यों को जानकारियां देता गया और समय पूरा होने पर उसने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल में सत्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है। लिखा है भांति भांति से, अर्थात परमेश्वर अलग अलग तरीकों से जानकारी देता है। अब्राहम को वह स्वप्न में दर्शन देता था, मूसा को उसने प्रत्यक्ष में व्यवस्था दी, आगे चलकर उसने यहोशू को प्रतिज्ञाएं दी, उसने स्वप्न में व्यवस्था द्वारा, उपमाओं द्वारा, अनुष्ठानों द्वारा बातें की, उसने इतिहास, कविता, भविष्यवक्ताओं द्वारा बातें की थी, उसने 1500 वर्षों में 45 लेखकों द्वारा अपनी बात कही। यहाँ इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें अत्यधिक आश्चर्यजनक बात बताता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनेक लेखक बाइबल को एक अद्भुत पुस्तक मानते हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी का एक महान नाटककार था, परंतु वह अकेला ही लिखता था, परंतु परमेश्वर अनेक लेखकों को काम में लेता है। उसने अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग योग्यताओं के लेखकों को काम में लिया था। पत्रस की यूनानी भाषा अच्छी नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसे काम में लिया। इब्रानियों के लेखक की यूनानी बहुत ही अच्छी थी और परमेश्वर ने उसे काम में लिया। गलातियों और कुरिन्थियों को लिखते समय पौलुस ने उन्हीं की यूनानी भाषा काम में ली, क्योंकि वह वहां प्रचार कर चुका था। मेरे प्रियो, यह पत्री एक महान शब्द से आरंभ होती है और वह शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए लेखक ने पहले कुछ नहीं कहा है। परमेश्वर को न मानना आपकी समस्या है, परमेश्वर की नहीं। जो परमेश्वर का इनकार करते हैं उन्हें परमेश्वर के बराबर रख कर देखें तो समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने अपना अस्तित्व सिद्ध करने में समय क्यों नहीं गंवाया। यदि कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर है, तभी तो वह उसके पास आ पाएगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि पूर्व युग में बाप दादों से, ये बाप दादे कौन हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहोशू, मूसा, दाऊद, यशाया आदि। हमारे बाप दादे नहीं, इब्रानियों के जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को अपने पूर्वज कहते थे। परमेश्वर अन्य जातियों का परमेश्वर भी है और मैं इसके लिए आभारी हूं। लिखा है पूर्व युग में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें की। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से बोलता था, इसलिए वह भविष्य के भेद भी खोल सकता था। भविष्यद्वक्ताओं का संदेश बहुत प्रभावी होता था। इन सब के द्वारा ही हमें पुराना नियम प्राप्त हुआ है, परंतु सच तो यह है कि उन्होंने जितना भी भेद प्रकट किया वह पूरा नहीं हुआ है, अर्थात पूरा नहीं था। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अंतिम, पूर्ण और निश्चित बात की है। आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसका दो पद। इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके दो पद में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। डॉक्टर वेस्टकॉट इसी बात को अपने शब्दों में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे उसके द्वारा बातें की तो जिसमें वह गुण है जो प्रकट करे कि वह एक पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। यदि वह इस समय स्वर्ग से भी बातें करे तो वे बातें वही होंगी जो वह कह चुका है, क्योंकि मेरे मित्रों, इस संसार के लिए अंतिम शब्द परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया है। लिखा है इन अंतिम दिनों में हमसे बातें की। यहां हमसे शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शब्द उन्हीं लोगों के संदर्भ में है जिनसे भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की हैं, पुराने नियम के लोग, परंतु ये लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके थे। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी में कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अंतिम वचन प्रभु यीशु के द्वारा दे दिया है, इसलिए वह वचन आपके और मेरे लिए भी अंतिम वचन है। पुत्र ही हमारे सामने है। आगे लिखा है हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। प्रभु यीशु पुराने नियम के सब लेखकों से उत्तम है, क्योंकि उसमें संपूर्ण प्रकाशन पर से पर्दा उठा दिया गया है। वह पूरे पुराने नियम को पूरा करता है और परमेश्वर के अंतिम वचन को मनुष्यों तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु ने 2010 वर्ष पूर्व कहा था कि पवित्र आत्मा उसकी बातों में से लेकर हमें समझाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पढ़ते हैं। अतः पवित्र आत्मा यूहन्ना, याकूब, लूका, पौलुस, पत्रस और अन्य सब नए नियम के लेखकों के माध्यम से हमें परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन प्रदान करता है। मेरे मित्रों, अब हमें पुत्र की उत्तमता 7 बेजोड़ वाक्यों द्वारा दी जाती है। हम में से कोई भी इन्हें पूरी तरह समझने का दावा नहीं कर सकते हैं। लिखा है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब सब कुछ उसी ने बनाया और उसी का है तो वह कैसे सब वस्तुओं का वारिस होगा? वह मानव रूप लेकर आया था और वह पहला मनुष्य था जिसे संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता दी गई थी। हम इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ ही शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कही जा चुकी हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर ने आदम को सब वस्तुओं पर अधिकार दिया है, तो वह अदन का माली नहीं पृथ्वी का शासक बनाया गया था। वह जैसा चाहता था वैसा होता था। जब उसे गर्मी चाहिए होती थी तो गर्म हो जाता था और जब उसे पानी चाहिए होता था तब ओस गिरती थी, परंतु पाप करके उसने पृथ्वी का संपूर्ण नियंत्रण खो दिया। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था। उसने हर क्षेत्र में आश्चर्य कर्म किए थे क्योंकि वह मनुष्य के शरीर रचना का नियंत्रण में रख सकता था। वह प्रकृति को नियंत्रण में रख सकता था। वह आंधी को डांट कर शांत करवा सकता था। वह 5,000 मनुष्यों को भोजन खिला सकता था। वह आदम द्वारा खोए हुए अधिकार को रखता था। प्रभु यीशु सब वस्तुओं का वारिस है और धर्मशास्त्र में लिखा है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यहाँ संगी वारिस का अर्थ बराबर के वारिस नहीं है। जब वसीयत में लिखा जाता है कि एक के नाम इतना भाग जाना है तो दूसरे के नाम इतना भाग होना है, तो वे उसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकते हैं। परंतु जब हमें किसी का संगी वारिस बनाया जाता है तब हम अपनी इच्छा से उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें प्रबंधक पर निर्भर करना होता है कि वह उचित समय पर हमारा हिस्सा हमें देता रहे। इसी प्रकार प्रभु यीशु वारिस है और हम संगी वारिस हैं। वही नियंत्रण करेगा और जैसा चाहेगा हमें जिम्मेवारी देगा कि हमें जगत में किस उत्तरदायित्व को निभाना है। मेरे प्रियो, हमारे पास स्वर्ग में सुरक्षित अविनाशी पवित्र अनंत विरासत है क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अनेक अद्भुत काम किए हैं। उसने आदम द्वारा खोए हुए अधिकार को फिर से ले लिया है और हमें अपने साथ संगी वारिस बना लिया है। जहां तक हम जानते हैं पुराने नियम में किसी भी भविष्यद्वक्ता को यह प्रतिज्ञा नहीं दी गई है। अतः इब्रानियों का लेखक सिद्ध करना चाहता है कि प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है। लिखा है, उसी के द्वारा उसने सारी वस्तुओं की रचना की। मेरे प्रियो, अनेक विद्वानों का मानना है कि यह उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद सृजन कार्य के संदर्भ में कहा गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परंतु यह उसके संदर्भ में नहीं है क्योंकि यहाँ सारी सृष्टि के लिए जो मूल भाषा यूनानी का शब्द काम में लिया गया है उसका अर्थ है युगों, युग। अतः यह वाक्यांश उसी के द्वारा उसने सारे युगों की रचना की, यह सृजन कार्य के परे जाता है। इसके द्वारा सारी सृष्टि को उद्देश्य प्रदान किया जाना है। वह वारिस भविष्य की योजना देता है। उसने युगों की रचना की है जिसमें उसने प्रत्येक वस्तु को उद्देश्य दिया है। अतः उसने संपूर्ण रचना के लिए उद्देश्य निश्चित किया है। बाइबल की बातों में समझदारी है। परमेश्वर ने जो भी किया उसमें उसका उद्देश्य निहित है। आज भी उसके हर एक काम में उद्देश्य है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, परंतु उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे एक पेड़ का फल नहीं खाना है। उसका फल खाने में कोई बुराई नहीं थी, परंतु परमेश्वर आदम को परखना चाहता था कि वह उसकी आज्ञा मानेगा या नहीं। मनुष्य पूरी तरह चूक गया। परमेश्वर का हर बात में एक प्रयोजन तथा एक उद्देश्य होता है। मनुष्य को परखने के अन्य समय भी परमेश्वर ने निश्चित किए थे। समय आने पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, वह भी मनुष्य की आज्ञाकारिता की परख थी। आज आप और मैं अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, व्यवस्था के कामों से नहीं। पहली बात तो यह है कि व्यवस्था हमें नहीं दी गई है, और दूसरी बात यह कि हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता के मानकों को पूरा नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट जान ले कि हम कर्मों द्वारा सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें बिना सिद्धता प्राप्त किए उधार नहीं देगा। अब परमेश्वर क्या करे? अतः उसने नया मार्ग बनाया। आज हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा ही है। जी हाँ, प्रभु यीशु इस जगत का सृजनहार है और इसमें उसका एक उद्देश्य है। आज का विचार है कि जगत बिना चालक की कार के समान समय और अंतरिक्ष में चल रहा है। बिना चालक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार यह जगत करोड़ों वर्षों से चल रहा है और प्रसंगवश सही काम कर रहा है। सूर्य सही समय पर उगता है और चांद अपनी कलाएं सही सही दिखाता है। चांद अपनी चाल नहीं बदलता। यदि आप चांद पर अंतरिक्ष यान भेजें तो वह अपनी जगह नहीं बदलता है। आप चांद पर निर्भर कर सकते हैं। हमारा जगत निरंकुश नहीं है, वह एक उद्देश्य के अधीन है और उसे यह उद्देश्य प्रभु यीशु ने दिया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उद्देश्य के साथ में रचा है। आप भी इस पृथ्वी पर उद्देश्य के साथ में ही हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है ताकि आप परमेश्वर को जानें, उससे प्रेम करें। परंतु आज मनुष्य पाप में लिप्त है, पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त है, फिर भी वह चाहता है कि धर्म के काम करके उद्धार को प्राप्त करे, सिद्धता को प्राप्त करे, जो कि असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख मैले चित्रों के समान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान हैं, तो हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम उससे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा ताकि उसके द्वारा से हम उद्धार को प्राप्त करें। वह हम सारे मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गया ताकि उस पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं प्रभु यीशु के पास आने के द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में आप अवश्य ही बैठें ताकि हम सब फिर से उन गंभीर बातों को जान सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु,
प्रभु जी आवे तेरा
व्याकुल।
जय जय जय